हरि ओम। आज के यह विशेष प्राकट्य दिवस जिसमें त्यागमूर्ति जी, जिनको हम त्याग के रूप में भी याद करते हैं और एक संत के रूप में भी याद करते हैं, हमारे संस्था के अध्यक्ष के रूप में भी याद करते हैं, साधना सदन के अध्यक्ष के रूप में भी याद करें, मगर उनकी जो पवित्र वाणी थी वह चिरस्मरणीय थी। जब भी वह हम सुनते हैं तभी हमें दृष्टि बढ़िया वहां तक पहुंच जाती है, और यही संत हमारे बीच में आके जो भी हमारे में कमियां हैं वो दूर करकर, हमें मोह से रहित करकर एक निर्मल सत्संगी जीव कैसा हो उसका प्रमाण हमारे बीच में कई सत्संगी स्वाध्यायी यहां रहते हैं, वह रोजाना अनुभव करते हैं। तो ऐसे यहां जो संत विराजित है उनके चरणों में वंदन करते हुए आज के परम पूज्य ब्रह्मलीन आचार्य त्यागमूर्ति जी महाराज को वंदन करते हुए प्रथम हमारे संस्था के ट्रस्टी श्री मधुसूदन जी झुंझुनवाला स्वागत करेंगे, तत्पश्चात साधना सदन के श्री राजपुरोहित जी अपनी वाणी पवित्र करेंगे, उसके पश्चात संतों का प्रवचन होगा, पूरी संचालन की व्यवस्था इसके पश्चात परम पूज्य स्वामी श्री विश्वात्मानंद पुरी जी महाराज संभालेंगे। आप सब की तरफ से पूज्य संतों के चरणों में वंदन करते हुए हरिओम।
नारायण 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 नारायण। सभी महापुरुषों संतों के श्री चरणों में शत शत प्रणाम। हमारे सत्संगी भाई बहन उन सबको जय श्री कृष्ण प्रणाम। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, मंगलकारी दिन आज का। आज लाख पंचमी भी है, ज्ञान पंचमी भी है, और मंच पर हमारे पंच परमेश्वर पांच महापुरुष पांच सतमासद। कैसा विशेष संयोग है कि पंच परमेश्वर यहां बैठे हुए हैं। ब्रह्मलीन त्यागमूर्ति जी के चरणों में प्रणाम। आज का जो विषय दिया गया है पंद्रहवें अध्याय का, गीता जी के पंद्रहवें अध्याय का पांचवा श्लोक, ये श्लोक ऐसा है जो हमें ज्ञान और परमपद परम तत्व को कैसे प्राप्त करना उसका मार्गदर्शन इस पंद्रहवें अध्याय के पांचवें श्लोक में है। मैं आप सबकी ओर से प्रेमपुरी आश्रम की ओर से सभी संतों को चरणों में प्रणाम करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमें ज्ञान की गंगा में अभंगा प्रसाद प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।
अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय परम गुरु प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंचस्थ अध्यक्ष महेश्वरानंद जी महाराज, मोहनानंद जी महाराज, विश्वासानंद जी महाराज, प्रणवानंद जी महाराज, धर्मानंद जी महाराज को वंदन। प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टीगण तिजोरी वाला जी और झुंझुनवाला जी, गिरीश भाई, भाइयों और बहनों, ओम नमो नारायण। गणेशानंद जी महाराज जिनका आज प्राकट्य दिवस है, वो बचपन से ही निकल पड़े सत्य की खोज में, और खोजते खोजते वो कैलाश आश्रम पहुंचे जहां प्रेमपुरी जी महाराज ने उन्हें शिक्षा और दीक्षा दी। प्रेमपुरी जी महाराज ने मुंबई के अंदर संत सभा में उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और चद्दर ओढ़ाई। गणेशानंद जी महाराज ने मुंबई में विद्वत समाज को वेदांत से परिचय करवाया। उन्होंने यहां प्रेमपुरी सत्संग मंडल की स्थापना की और हरिद्वार में साधना सदन की स्थापना की। साधना सदन में और प्रेमपुरी सत्संग मंडल में प्रतिदिन स्वाध्याय प्रवचन होते हैं, और हरिद्वार में वर्ष में एक बार ज्ञान यज्ञ होता है जो करीबन 35 दिन का होता है, और जिसमें प्रस्थान त्रयी मूल मूल पढ़ाई जाती है। विनयशरण जी महाराज का जीवन एक आदर्श जीवन था, एक संपूर्ण जीवन था। वो सवेरे उठते, मंदिरों में जाते, भगवान को फूल चढ़ाते, अर्चना करते, वर्ष में कई बार यज्ञ करवाते और स्वात्या प्रवचन तो उनकी आत्मा ही थी। इस तरह से वो कर्म, उपासना और ज्ञान सबका संतुलन बनाए रखे थे। साधना शरीर की व्यवस्था निरंतर चलती रहे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी श्री विश्वानंद जी को बनाया, जिन्होंने महाराज जी की गतिविधियों को बनाए रखा और उसमें वृद्धि भी की। विश्वानंद जी महाराज ने अपनी योग्यता से संतों का मन जीता और भक्तों का आदर। गणेशानंद जी का नाम याद करते ही मन में एक अच्छी शांति सी आ जाती है। गणेशानंद जी की कई छोटी छोटी चीजें बताते थे जो जीवन में धारण करने योग्य होती है। जीवन में शास्त्रों का जो उपयोग है, शास्त्रों का तात्पर्य ब्रह्म और जीव की एकता बताने में ही है, और वो ये गुरु के माध्यम से ही बराबर समझ में आ सकती है। वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशाम ब्रह्मेव जीव सकल जगश्च अखंड रूप स्थिति मोक्ष ब्रह्म अद्वितीय श्रुति प्रमाण। अद्वितीय ब्रह्म है और श्रुति इसका प्रमाण है कि जीव और ब्रह्म एक ही है। ये समझने के लिए हमें साधन चाहिए, हमें साधना करनी पड़ती है, और जो आज का विषय है वो एक साधन रूप से ही है। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा गंधर्व मुक्ति दुख सुख के संगे अच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तक। उस पद को पहुंचने के लिए निर्मोह होना चाहिए। ये सब जो जो इन्होंने गुण बताए हैं वो सब गुण आने चाहिए। गुरुजी कहते थे कि रथी रथ पे सवार है और गंतव्य पे जाने के लिए उसको रथ से नीचे उतर जाए तो गंतव्य पहुंच जाता है। ऐसी बात गुरुजी कहते थे कि ये सब साधन करने के लिए मन की शांत अवस्था बहुत जरूरी है। मन का शांत होना, उसके बिना न तो आप साधन कर सकते हैं न कोई ध्यान भजन भी कर सकते हैं। ऐसे तो कई उपाय बताते हैं महापुरुष, गुरुजी ने एक बात बहुत ही मार्मिक कही थी जो मुझे बहुत ही उपयोगी हुई कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। अगर हम विधि के विधान को मान लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। वो कहते थे यद भावी न तद भावी, भावी चेद नान्यथा इति चिंता विषग्नोयम बोधो ब्रह्म निवर्तक। जो होना है वो होके रहेगा और नहीं होना है वो होगा नहीं। अगर इस बात को हम धारण कर ले तो हमारा मन शांत हो जाता है। हम कई बार जब अच्छा होता है तो हम अपने आप को श्रेय देते हैं कि मेरी बुद्धि से, मेरी योग्यता से ये ठीक हुआ, और जब गलत होता है तो हम भगवान को कहते हैं ये भगवान ने ऐसा मुझे क्यों दिया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। इन दोनों को समत्व करने का एक ही उपाय है और वो ये है कि उसकी शरणागति में जो होना है वही होगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, और शांत मन के अंदर यदा न लीयते चित्तम न विक्षेप्यते पुनः अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। और ऐसे मन में प्रभु का अनुभव होता है, प्रभु की प्राप्ति होती है। इसका सारा का सारा सार यही है कि चेतन और जड़ को अलग करना है, और जब चेतन अलग हो जाता है तो अपना भाषित होता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रकारकम धेमा विद्युत भाति कुतो अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्व इदम विभाति। उसके भाषित होने से ही सब कुछ भाषित होता है और ये सारा का सारा जगत उसी के प्रकाश में है। अतः काम तो एक ही है कि चेतन और जड़ को अलग करना है। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत हेतु सुखी, संसार से छूट जाएगा। आश्रम तथा वर्णादि का किंचित ऋतु अभिमान कर, आसक्ति चढ़ के देह से हो जा अमर, हो जा अमर। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण,
हरिओम। दधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तंहदेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम गुरुदेव एवं सद्गुरुदेव के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। आज की सभा के सभाध्यक्ष परम श्रद्धास्पद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर महाराज श्री जी, आज हम लोग महाराज श्री जी का जो प्राकट्य दिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनके अत्यंत निकटवर्ती मित्र प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन त्रिवेणीपुरी जी महाराज के उत्तराधिकारी श्रीमद स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, जो आज की सभा को अपनी अध्यक्षता से सुशोभित कर रहे हैं। आज के सभा में मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टी महामंडलेश्वर श्रीमद स्वामी मोहनानंद जी महाराज, हमारे अत्यंत प्रेमास्पद और प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अखंडानंद जी महाराज के कृपा पात्र महामंडलेश्वर श्रीमद स्वामी प्रणमानंद सरस्वती जी महाराज, जो विशिष्ट प्रवक्ता के रूप में इस सभा में पधारे हुए हैं, एवं हमारे अत्यंत प्रेमास्पद प्रतिदिन आप जिनसे स्वाध्याय तथा प्रवचन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं,
श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज, स्वामी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के समस्त प्रेमास्पद ट्रस्टीगण, इस अध्यात्म विद्या भवन के सत्संग प्रेमी माताएं एवं भाइयों, आज सद्गुरुदेव महाराज श्री जी, जो कि इस आश्रम ट्रस्ट के भी अध्यक्ष रहे हैं, साधना सदन आश्रम कनखल एवं स्वामी प्रेमपुरी सत्संग मंडल के संस्थापक, उनका 94वां प्राकट्य दिन मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हैं। महाराज श्री जी का प्रस्थान त्रयी के प्रति अनन्य भाव था, बड़ी निष्ठा थी, इसलिए स्मार्त प्रस्थान के नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में जो बड़ा प्रसिद्ध अध्याय है, जिसे स्वयं व्यास जी ने अपने मुख से शास्त्र की संज्ञा दी है, इति गुह्यतमं शास्त्रम ऐसा कह करके 15वां अध्याय जो पुरुषोत्तम योग नाम से प्रसिद्ध है, उसके 5वें श्लोक को आज की सभा में विषय के रूप में रखा है। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनुरुत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमभ्यम तत्। इसमें ये बताया गया है कि तत्पद यानी कौन सा पद, तो पद्यते ज्ञायते यत तत्पदम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पद शब्द का अर्थ निकलता है ज्ञेय वस्तु, जिसको जानना आवश्यक है, जिसको जाने बिना परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, उसे यहां पर पद शब्द से कहा गया है। और उसका एक विशेषण है सर्वनाम तत्, यानी वह ज्ञेय वस्तु। तो वह ज्ञेय वस्तु यानी कौन सी ज्ञेय वस्तु, तो पूर्व श्लोक में बताया गया है यस्मिन गतान निवर्तन्ति भूय और तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये और यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, अर्थात जिससे यह मायामय संसार अनादिकाल से अभिव्यक्त हुआ है, भास रहा है, जो इस संसार का अधिष्ठान है और जिसे प्राप्त करने के बाद फिर इस संसार में बार बार आना नहीं पड़ता, आना जाना समाप्त हो जाता है। वह यहां पर तत् शब्द से लेना है, जिसको प्राप्त करने के बाद दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता और जिससे यह संसार भास रहा है वह तत्पद है, जगत का अधिष्ठान, और उसे गच्छन्ति यानी अवगच्छन्ति, अवगच्छन्ति का अर्थ है अनुभवन्ति, उसका अनुभव करते हैं, उस पद का आत्मरूप से अनुभव करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में उस स्वरूप को, जगत के अधिष्ठान को जानते हैं। कौन जानते हैं? तो कहा अमूढ़ा यानी विवेकी न, मूढ़ कहते अविवेकी को, अमूढ़ा का अर्थ निकलेगा विवेकी न, तो अमूढ़ा तत्पदम गच्छन्ति यानी अवगच्छन्ति आत्मना अनुभवन्ति। जो विवेकी लोग हैं वे आत्मरूप से जगत अधिष्ठान ब्रह्म का अनुभव करते हैं। और ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इत्यादि श्रुति वाक्य बताते हैं कि आत्मज्ञान से ही परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव ही एकमेव मुक्ति कहो मोक्ष कहो परम पुरुषार्थ कहो उसका साधन है। तो वो परम पुरुषार्थ का साधन भूत आत्मानुभव किसको होता है? विवेकी को। लेकिन कैसे विवेकी? तो उन विवेकी के पांच विशेषण पूर्वार्ध में बताए हैं। निर्माण मोहा एक, जीत संग दोषा दूसरा, अध्यात्म नित्या तीसरा, और चौथा अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा और द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञेर पांचवा। तो आज पांच पांच की ही ज्यादा, श्लोक भी पांचवा, आमूढ़ा के विशेषण भी पांच, और बैठे भी पांच है, एक एक विशेषण को एक एक समझाएगा और आप पंचकोशातीत हो जाएंगे। और लाभ पंचमी है, इसमें परम पुरुषार्थ का लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसी महाराज श्री जी से प्रार्थना। तो सर्वप्रथम अध्यक्ष जी की अनुमति से आज की सभा में विशिष्ट प्रवक्ता के रूप में हमारे परम प्रेमास्पद श्रीमद स्वामी धर्मानंद जी महाराज समुपस्थित हैं, उन्हें हम निवेदन करते हैं 12 मिनट। ओ भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्वं सस्तनोभिर्व्यसेम देव हितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वनाम धन्य त्याग के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप त्याग मूर्ति जी महाराज के चरणों में सत सत अभिनंदन वंदन। आज के कार्यक्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर
मैसरान जी महाराज एवं पदवाक प्रमाण पारावारिण श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ परमादश आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी स्वात्मानंद पुरी जी महाराज एवं श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवान जी महाराज एवं अन्यान्य हमारे श्रोतृबिंद भक्तबिंद मातृबिंद परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर मोहनान जी महाराज एवं श्रोतृबिंद भक्तिबिंद भक्तिमती माताओं भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग प्रातस्मरणीय जो साक्षात त्याग के मूर्त स्वरूप थे सुनाम धन्य त्याग मूर्ति गणेशान जी महाराज के प्राकट्य महोत्सव के पावन प्रसंग पर समवेत हुए हैं। आज का विषय सभी ने श्रवण कर ही लिया है, निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। उसी पद को सब चाहते हैं, हम सभी एक ऐसे पद प्रतिष्ठा की खोज कर रहे हैं जो पद निरापद हो, संसार के सारे पद चाहे कोई भी पद हो, सारा पद कोई न कोई आपदा से समस्या से घिरा हुआ है। चाहे ब्रह्मा जी का पद हो चाहे कोई पद क्यों न हो, वह भी संसार के अंतर्गत ही है, पर एक ऐसा पद है जिसे हम कहते हैं निर्वाण पद। निर्वाण पद मतलब निर्गतः वाणः अविद्या राग कामादयः इति निर्वाण पदम, जिसके चित्त से अविद्या कामना वासना के बाण, बाण जानते ना चुभता है, जो बाण तो घुसता है आसानी से पर निकलने में बड़ी उसमें कठिनाई होती, मुश्किल होता, ऐसे ही अनादिकाल से हमारे चित्त में अविद्या वासना कामनाओं का जो राग द्वेष का द्वंद्वात्मक बाण चुभा हुआ है, उस बाण को जब हम निकाल देते हैं तब आप उस परम पद को उपलब्ध हो जाते हैं। उस पद को पाने के लिए आपको कहीं आना जाना नहीं, तो ज्ञानी के प्राणों को उत्क्रमण नहीं होता, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्मवेशन ब्रह्म आप्यायंती, ज्ञानी के प्राणों को उत्क्रमण नहीं होता। वह जो निर्वाण पद है निरापद है, उस पद को कैसे प्राप्त करें और कौन प्राप्त करते हैं, अमूढ़ा जो विवेकी हैं, कैसा विवेक, तो कहा कि नित्यानित्य वस्तु का इसने विवेचन कर लिया है। आप प्रेमपुरी में प्रातःकाल नित्य प्रति विवेक करते हैं कि नित्य क्या है अनित्य क्या है, उसका साधन बताया निर्माण मोहा जितसंग दोषा, जो हमारे जीवन में जितनी भी समस्या हैं सारी समस्याओं का मूल जड़ ये मान मोह ही है। मान शब्द का सिर्फ सम्मान ही नहीं, मान शब्द की निष्पत्ति मांग माने शब्द धातु से होती है। हम लोग अपने आप को 3.5 हाथ के शरीर में जो सीमित करके समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ा आपका मान है। आप तो बिल्कुल सच्चिदानंद हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, अखंड आनंद स्वरूप हैं, फिर भी आपने अज्ञान से अपने आप को 3.5 हाथ वाला शरीर, जन्मने वाला मरने वाला, यह शरीर भी बहुत अच्छा नहीं, पंचभूतात्मक है, बल्कि पृथ्वी की तो माटी जरा अच्छी है, उसमें बदबू स्मेल नहीं आता, गंदगी नहीं आती। जो हमारा शरीर है ऐसी मिट्टी से बना है कि आप एक दिन स्नान न करो तो आप अपने शरीर को स्वयं भी सहन नहीं कर पाओगे। आसपास दोस्तों की बात को छोड़ दो, ये जो शरीर है इसमें अत्यंत ये मल मूत्र का ढेर है, भंडार है, फिर भी हम अज्ञान से इसको अपना मान लेते हैं। अपना माने तो कोई क्षति नहीं, बल्कि इसमें आत्मबुद्धि कर लेते, बस यही मैं हूं। तो सबसे पहले आपने भूल की जो अपने आप को इस शरीर में बांध लिया, इस सीमित परिमाण विशेष को जो 60-70 किलो वाला है, इसको हमने अपना स्वरूप समझ लिया। जब आप इसको अपना स्वरूप समझ लेते हैं, जरा सा किसी ने सम्मान किया तो आप अपने को सम्मानित अनुभव करते हैं, जरा सा किसी ने कुछ कड़वे शब्द बोल दिया तो अपने आप को आप अपमानित महसूस करते हैं। जब आपका विवेक जग जाएगा, विवेक मतलब कि अपने असली स्वरूप को पहचान लेंगे, मैं कौन हूं, जैसे पहचान लोगे वैसे आप निर्माण मोहा उपलब्ध हो जाएंगे। हमारा असली स्वरूप है पंच कोशातीत, जो आप आत्मा है। अन्नमय कोष को हम अपना स्वरूप समझ करके संसार के विषयों से मुक्त हो रहे। दूसरा शब्द मोह। सबसे पहले हमने भूल किया जो इस 3.5 हाथ के शरीर को आत्मा मान लिया। आत्मा मानने के बाद दूसरी भूल हमने कर दी, संसार से मोह। मोह शब्द का अर्थ होता है मोह, वैचित्य धातु से मोह बनता। वैचित्य मतलब विविध प्रकारेण विषयान चिनोति स्वात्मतया। आप अनेक विषयों को बार बार चुनते हैं कि बड़ा सुंदर, बड़ा पसंद है। आंख से आपने रूप देखा, रूप देखने के बाद आप मुग्ध हो गए कि बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। वह रूप तो पंचभूतात्मक है, परंतु हमने ऐसी ममता कर ली, उसके साथ ऐसा लगाव हो गया कि आप उसके बिना रह नहीं पाते। तो रूप, रस, गंध जो विषय हैं, इन विषयों में हमने मोह कर लिया। जब तक हमारे जीवन में ईमान और मोह बना हुआ है, तब तक लाख प्रयास करो आप परम पद को, परम शांति को उपलब्ध हो नहीं सकते। स्वनाम धन्य परम पूज्य त्यागमूर्ति जी महाराज ने अपने जीवन से, क्रिया से, कलाप से, व्यवहार को से सबको उपदेश किया करते थे कि भाई हमें संसार में रहना है तो कैसे रहना है, तो निर्माण मोहादित संग दोषा। छोड़ने में कोई क्षति नहीं, आपको यह माला पकड़ना हो तो पहले मन से सोचना पड़ता है कि हमारे पॉकेट में कितने पैसे हैं, इस माला को खरीदने लायक जेब में पैसे हैं कि नहीं। इसके बाद पैसे को देखकर तब जाकर हाथ आगे बढ़ाते हो कि माला मैं खरीद सकता। एक छोटी सी चीज भी आपको पकड़ने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता, और छोड़ना है तो एक सेकंड में हाथ झाड़ दो छूट गया। तो छोड़ना आसान है, परंतु हम लोग प्रयास नहीं करते। तो इस संसार में कैसे जीवन जिया जाए, क्योंकि संसार में प्रारब्धानुसार हमारा जन्म हुआ है। जब जन्म हुआ है तो अवश्य हमें इस संसार में रहना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना ही प्रयास करो, इस संसार से बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक कोई जंगली जानवर नहीं। समाज में रहना ही है आपको, तो कैसे स्वस्थ जीवन जिया जाए, इसी कला को श्लोक में बताया है कि भाई सबसे पहले अपने जीवन में एक सूत्र धारण कर लो कि निर्माण मोहा। गौतम बुद्ध कैसे गुजर रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़े नगर सेठ मिले, देखते ही हजार गालियां दे डाली कि तुम कैसे सन्यासी, कैसे विरक्त हो, तुम्हें लोग भगवान कहते हैं, तुमने हमारे घर उजाड़ डाली, नन्हे मुन्ने हमारे बालक इकलौता मेरा बेटा था, तुमने उसके मति को भ्रमित करके उसे सन्यास दे दिया, खूब गालियां दिया। गाली देते देते वो आदमी थक गया, उसने कहा मैंने इतनी गाली दी तुम्हें जरा ही फर्क नहीं पड़ा, बात क्या है बताओ। बुद्ध ने कहा भाई तुम्हारा काम था देना और हमें नहीं चाहिए तो हमने नहीं लिया, तो चीज कहां गई, देने वाले के पास। तो जीवन में निर्माण मोहा हो जाएंगे तो संसार की कोई भी माया की झंझावात आपको विचलित प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले यह निश्चय करना है कि हम ब्रह्मास्मि, हम साढ़े तीन हाथ वाले यह शरीर नहीं है, बल्कि हम कम नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, शुद्ध बुद्ध मुक्त हम ब्रह्म ही हैं। यदि आपने ऐसा निश्चय कर लिया तो आगे आप द्वंद्व विमुक्ता तो अपने आप हो जाएंगे। समय की सीमा समाप्त हुई, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी पुष्पांजलि मरासी के चरणों में समर्पित करता हूं। हरिओम तत्सत।
हरिओम। बड़े सुंदर शब्दों में और निश्चित समय में निर्माण मोहत्व विशेषण पर प्रकाश आचार्य स्वामी धर्मानंद जी महाराज ने डाला। हमारे वास्तविक स्वरूप जगत अधिष्ठान परमात्मा का हमें आत्मरूप से अनुभव न होने देने में एक अवरोध है। वो अनादिकाल से जो भी माया से प्राप्त होने वाला हमारे कर्म के अनुसार ये कार्यक्रम संघात है, अर्थात तीन शरीर है कहो या पंचकोश कहो, इनमें आत्माभिमान, इसी को अध्यास कहते हैं, भ्रम कहते हैं, और इसी को निर्माण मोहा में मान शब्द से कहा गया है। दो पदार्थ हैं, एक आत्मा अनात्मा। तो जो भी अनात्मा है उसे मैं समझना, ये मान यानी अभिमान है, अहंकार है, और यही हमारे वास्तविक स्वरूप की अनुभूति में मुख्य बाधक है। और व्यास जी कहो या भगवान श्री कृष्ण कहो, हमें बता रहे हैं कि ये मान को छोड़ना है। ये मान आया क्यों, तो कहते हैं इसलिए आया है कि मोह हमारे अंदर है। मोह कहते हैं आत्मानात्मा का अविवेक है। आत्मा और अनात्मा बिल्कुल अंधकार और प्रकाश के तरह अलग अलग, किंतु वे अलग अलग होते हुए भी अलग अलग प्रतीत नहीं हो रहे हैं, इनका विवेक नहीं हो पा रहा है, वो अविवेक है मोह। तो निर्मोह जो होंगे, विवेक अविवेक से रहित जो होंगे, उनके अंदर से यह मान चला जाएगा, उनमें निर्माणत्व आएगा। तो इस प्रकार ये बड़े सुंदर शब्दों से निर्माण मोहत्व विशेषण को आचार्य धर्मानंद जी ने स्पष्ट किया। अब इस सभा में विशिष्ट प्रवक्ता के रूप में पधारे हुए हमारे परम प्रेमास्पद महामंडलेश्वर श्रीमद स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज से निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत विषय पर आप 15 मिनट तक मार्गदर्शन करें।
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। इस संस्था के अधिष्ठाता प्रतिष्ठाता अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज, जिनकी हम लोग स्मृति में उपस्थित हैं, ऐसे अनंत श्री महामंडलेश्वर त्यागमूर्ति जी महाराज इस संस्था की उत्प्रेरक, जिनकी प्रेरणा से इस भवन की स्थापना हुई, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री मोहनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज, प्रस्तुत में प्रस्थानत्रयी के ऊपर जिनका बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा है, ऐसे प्रस्थानत्रयी के परम विद्वान श्रद्धे स्वामी श्री धर्मानंद जी महाराज, संस्था के ट्रस्टीगण, उपस्थित भक्तमंडल, त्यागमूर्ति महाराज जी का ये प्राकट्य महोत्सव, जैसा उनका जीवन था वैसा ही विषय लिया गया है। इस श्लोक को हमें समझना है, इसके अर्थ को, तो हम कुछ त्यागमूर्ति जी महाराज जी के जीवन के संदर्भ में जान लेंगे, तो ये श्लोक हमें प्रकाश देगा जरूर। हम किसी भी चीज को जानना चाहते हैं तो उसका जानना उसके शब्द में नहीं है, उसके अर्थ में है। हम ज्ञानी के जीवन को जान ले तो मालूम पड़ेगा ज्ञानी क्या है। हम भक्त के जीवन को जान लेंगे तो मालूम पड़ेगा भक्ति क्या है। योगी के जीवन को जान ले तो मालूम पड़ेगा योग क्या है। भोगी के जीवन को जान लेंगे तो मालूम पड़ेगा भोग क्या है। 1986 में एक बार मैं परम पूज्य त्यागमूर्ति जी महाराज जी को मिला, बहुत छोटा था मैं। एक महात्मा जी थे एकांतारण्य नाम के, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। त्यागमूर्ति जी महाराज जैसे नाम था वैसे ही थे वो। जैसे आप त्यागमूर्ति बोलते हैं तो वो त्यागमूर्ति ही थे वो। उस समय उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था, आश्रम छोड़ के कहीं नहीं जाना है। सर्वप्रथम मैं उनके इतना निकट आया, 3 दिन तक संस्था में था, साधना सदन में। रात्रि के समय सेवा करने के लिए हम लोग गए, हम लोग बनारस जा रहे थे पढ़ने के लिए, और भी कोई उनके सेवक चरण दबा रहे थे, मैं भी गया और चरण दबाने लगा। मैं आश्चर्यचकित हो गया, इतनी उम्र उनकी, लेकिन पैर जब मैंने छुआ तो वो पत्थर की तरह लग रहे थे मेरे को। मैंने उनका शरीर इतना मजबूत था। फिर महाराज श्री को मैंने बहुत सारी चीजें पूछी, वो बड़े प्रसन्न हो गए कि आप बनारस जा रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो गए। मैंने कहा कि महाराज जी आप अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं एक लंगोटी लगा के, शरीर पर कुछ भी नहीं था, बोले मानस सरोवर की यात्रा करके आया हूं। और उस समय, इस समय बहुत कुछ सुविधा नहीं थी, एक लंगोटी शरीर पर है, कोई वस्त्र नहीं है। तो मैंने महाराज जी को पूछा कि आप मानस सरोवर की यात्रा करके आए, शरीर पर कुछ नहीं, ठंड, भोजन वगैरह आप क्या करते थे, कैसे करते थे? उन्होंने कहा 2-3 दिन में एक बार भोजन मिलता था, तो बोले बहुत ज्यादा खा जाता था, 3 दिन का बोले एक ही समय खा जाता था। अरे बहुत मजेदार साधु, बहुत मजेदार साधु। और बोले वहां जब हम गए मानस सरोवर, तो लामा, पहली बार उनके मुख से मैंने शब्द सुना लामा। बोले वहां लामा होते हैं, बौद्धों के लामा। और बोले जैसे ही मैं वहां गया तो वहां के बौद्धों ने बहुत प्रसन्नता से बोला, ये काशी लामा आए, बोले काशी लामा। और सब लोग मेरे को मिलने के लिए आए, बोले काशी लामा, काशी लामा, काशी लामा, काशी। और ये बौद्ध भिक्षु काशी लामा, उनके लिए तो बहुत बड़ी कोई चीज आई, क्योंकि वहां बौद्ध मठों में सन्यासियों के बीच में चर्चा होते हैं, कोई काशी कोई जगह है, वो बहुत बड़ी चीज है, और वहां पर लामा रहते हैं, और उनको हम सन्यासियों को वो लोग काशी लामा बोलते हैं। बोले सारे लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे काशी, वो मैंने महाराज बहुत सारी चीजें बोल रहे थे महाराज जी उसमें, और उनकी इतनी स्मृति दृढ़ थी, वो वर्षों पुरानी भाषा वो बोल रहे थे, वो बोल भी रहे थे कि वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, वो हम तो भूल गए, वो लोग ऐसा ऐसा बोल रहे थे, उस भाषा में बोल रहे थे, आप क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, आप कहां से आए, आप काशी में कहां रहते हैं, क्या करते हैं। और बोले कि वो पुआल, पुआल लगाकर निवास उन्होंने बना रखे थे, उसमें हमको प्रवेश कराया, बोले खूब भोजन कराया। वो क्या त्याग उनका, वो जैसा वो नाम था वैसा उनका जीवन था। उन्होंने और एक बहुत मजेदार बात सुनाई। मैंने कहा कि महाराज जी आपने अध्ययन कहां किया है, और वो इतने धीरे धीरे बोलते थे वो, और वो जो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि वो किसी विशेष अवस्था से बोल रहे हैं, वो किसी गहरी अनुभूति में बैठे हैं और वहां से वो बोल रहे हैं। बहुत धीरे धीरे बोलते थे, वहां की पूरी नहीं खोलते थे, नीचे गर्दन करके। उन्होंने कहा कि मैंने नव्य न्याय पढ़ा, भारती जी महाराज, शंकर चैतन्य भारती जी महाराज। बोले शंकर चैतन्य भारती जी महाराज यहीं पर आए थे आश्रम में, और एक बात उन्होंने बहुत मजेदार बोली, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं ऐसे न्याय का विद्यार्थी था और पढ़ने के लिए बनारस जा रहा था, बहुत सारी उत्सुकताएं थी। उन्होंने कहा कि मैंने अवच्छेदकत्व निरुक्ति, सिद्धांत लक्षणी, व्याप्ति पंचक आदि ग्रंथ, बोले 2-4 साल पहले पढ़े थे, 2-4 साल ताजे ताजे थे। आप ध्यान देना उन्होंने शब्द क्या बोला, बोले 2-4 साल पहले पढ़ा था, वो ताजे ताजे थे,
और जब शंकर चैतन्य भारती जी महाराज यहां आए तो मैंने कहा महाराज मेरे को आगे के ग्रंथ पढ़ना है, तो उन्होंने अवच्छेदकत्व निरुक्ति वगैरह में जो भी कुछ पूछना था पूछ लिया। दो चार साल पहले पढ़ा था, वो ताजा ताजा था, मैंने उसका उत्तर दे दिया, बड़े प्रसन्न हो गए। मैं सोचने लगा दो चार साल पहले पढ़ी हुई थी ताजी, और यहां तो दो दिन में भूल जाते हैं हम लोग। तो मैंने कहा महाराज जी चार साल पहले हुई चीज आपके लिए बहुत ताजी, और बोले क्या है, बोले वो तो वैसी की वैसी था बोले उपस्थित। फिर उन्होंने शंकर चैतन्य भारती जी महाराज जी के पास आगे का विषय पढ़ा। उनके जीवन में वेदांत निष्ठा केवल बातों की चीज नहीं थी, वेदांत निष्ठा उनका जीवन था, वेदांत निष्ठा उनका आचरण था। आज का जो विषय है इसमें दो चीजें, साधन और साध्य। आप अभी पांच जो श्रवण कर रहे थे ये साधन है, और साध्य पदम अव्ययम तत् साध्य है। आप बहुत गहराई से विचार करेंगे तो ये सारी चीजें अलग नहीं है। वेदांत में आप निर्माण मोहा आप बोलते हैं, निर्माण मोहा, ये सारे लक्षण ज्ञानी के हैं, ये सारे लक्षण साधक के हैं, और जो लक्ष्य हैं वो भी तो ऐसा ही हैं। हम जिस तत्व को पाना चाहते हो ब्रह्म तत्व, आप उसके लिए पद शब्द के द्वारा कह रहे हैं, पदस्थैर्य और पदगतो धातु से ये पद शब्द बनता है। दुनिया के सारे जितने भी पद हैं, प्रतिष्ठाएं, ये अनात्म पदार्थ हैं, सब पद गतो धातु से बनते, गतिमान है। हम जिसको भी प्राप्त करते वो चला जाता है, हाथ से सरक जाता है। हम जहां पर बैठे हैं वो भी सरक जाता है, आप जिसको पकड़ के रखे वो सरक जाता है। ये पद गतो धातु की चीजें हैं। और जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, जो निज रूप है स्वयं का, जहां कहीं जाना नहीं आना नहीं है, वो पद स्थैर्य है, आत्मसत्ता है। और उसके लक्षण भी यही है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म, ये सारे लक्षण है। और वो बनने के लिए यही तो बनना है, और क्या है। जो औपाधिक, जो उपाधि में हम बैठे हैं, ये सारी उपाधियां हट जाए तो वही तो है। यहां पाना नहीं, आप बोलते ना यहां तो केवल जानना है, यहां पाना नहीं केवल जानना है। ये सारी चीजें हट जाए, जो प्रतिबंध हटाना है, साधन माने प्रतिबंध हटाना, यहां कुछ बनना नहीं है। ये जीवन के जितने भी प्रतिबंध हैं, निर्माण मान प्रतिबंध है, मोह प्रतिबंध है, द्वंद्व प्रतिबंध है, ये संग जितने आसक्तियां ये प्रतिबंध है, और ये सारे प्रतिबंध जब हट जाते हैं तो प्रतिबंधों का हटना ही तो होना है। यहां कुछ होना नहीं है, यहां ब्रह्म बनना नहीं है, यहां केवल समझने में जो बाधा है उसको हटते जाना। और वो जैसे पानी कुएं से हम निकालते, पानी पैदा थोड़ी करते हैं, वो प्रतिबंध हटा देते, पानी तो है ही। और ये दोनों चीजें हमें पूज्य स्वामी जी महाराज में मालूम पड़ती हैं, ये निर्माण मोहा जित संग दोषा। एक मेरे को बात याद आ गई, स्वामी जी महाराज जी को लोग बोलते थे वो बड़े कंजूस हैं, लोग बोलते थे कि महाराज जी बड़े कंजूस हैं, वो महात्मा लोग बोलते और वो बड़े कंजूस हैं। मैंने कहा कि मैं मान नहीं सकता हूं कंजूस है। बोले क्यों? मैंने कहा कि जब मैं बनारस जाने लगा तो मेरे को बोले कि ब्रह्मचारी इधर आओ इधर आओ, हम तो ब्रह्मचारी थे, बच्चे थे उसको, तो दौड़ता हुआ गया 500 रुपए निकाल करके मेरे को, उस समय की बात है, 500 रुपए निकाल करके मेरे को दी। 500 रुपए मतलब बहुत बड़ी चीज थी। बोले पढ़ने जा रहे हो? लो, अरे वो बहुत महापुरुष थे, सारे लक्षण उनके अंदर थे, निर्माण मोहा जित संग दोषा। आज कोई ऐसा महापुरुष अभी भी है ऐसा मत सोचना, अभी भी वही तत्व, वही साधना, वही सब कुछ है। अब देखने को मिलते नहीं ऐसे महापुरुष, बहुत महापुरुष थे बड़े, और उनके सानिध्य में जब हम लोग जाते थे तो ऐसा लगता था कि हमको भी वैसे ही बनना है, और उस समय भी वैसे ही था। अपने त्यागमूर्ति गणेशानंद जी महाराज जी थे, मंच के ऊपर बैठते थे स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी महाराज, कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद गिरी जी महाराज, वो काशी के भोलानाथ क्या नाम था उनका, भोला गिरी जी महाराज अपने आनंद वन के स्वामी श्री महामंडलेश्वर काशी का, ओ ये जब महापुरुष मंच पर बैठते थे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर, ओ ऐसी सभा सज जाती थी और वेदांत का चिन्ह, ओ ऐसे बैठे रहते थे मूर्ति की तरह साधु, हम तो बच्चे थे वो जाके बैठ जाते थे, ओह वो महामंडलेश्वर, और वो लोग मूर्ति की तरह बैठते थे, मूर्ति की तरह एक बार आसन लगा दिया तो बैठ गए वो, ओ बड़े बहुत उत्तम कुटी के साधु। और इस महापुरुष की हम लोग प्रागट्य महोत्सव के रूप में विराज रहे हैं, हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके जीवन में जो निष्ठा वेदांत के प्रति, आपके जीवन में जो त्याग वैराग्य, वो सारी चीजें हमारे अंदर आए और हम आपके पथ के अनुगामी बने। इतना कहते हुए उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत,
हरिओम हरिओम। बड़े सुंदर शब्दों में महामंडलेश्वर महाराज जी ने महाराज जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए जितसंग दोषा इस विशेषण को स्पष्ट किया। भगवान ने गीता में पहले एक संसार वृक्ष का वर्णन किया 15वें अध्याय के ही शुरू वाले श्लोकों में, और ये बताया कि जब आपको तत्पद का अन्वेषण करना है, तत्पद को जानना है, ज्ञातव्य है ना, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, तो पहले क्या करो, तो असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्त्वा फिर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तो एक असंग शस्त्र बताया है और उससे संसार वृक्ष का छेदन करना है। असंग शस्त्र है वैराग्य, संग एक दोष है, संग एव दोष संग दोष, और स जितह यही ते जितसंग दोषा, तो संगात्मक दोष को जीत लिया है जिन्होंने, उन्हें कहा जाता है जितसंग दोषा। और संग का अर्थ है संग यानी आसक्ति, ध्यायतो विषान पुंस संगस तेषूपजायते, इसमें संग का अर्थ विषय का चिंतन करने से विषय में राग उत्पन्न होता है, ये कहा गया। संग का अर्थ वहां पर राग किया है, आसक्ति की है। और संग शब्द ये उपलक्षण है द्वेष का भी, इसलिए संग शब्द का अर्थ निकलेगा वाच्यार्थ तो राग और उपलक्षार्थ द्वेष, और ये दोनों भी दोष हैं, राग द्वेष आपके चित्त में होंगे तो आपके चित्त को स्थिर नहीं होने देंगे। राजपुरोहित जी ने बताया था ना कि महाराज श्री जी कहा करते थे कि परमात्मा की अनुभूति करने के लिए अति आवश्यक है मन का स्थिर होना, और जिसके चित्त में राग द्वेष है वो स्थिर नहीं रह सकता, और स्थिर नहीं है मन जिसका, वह जो परमात्मा का चिंतन है नहीं कर पाता, परमात्मा की फिर उसे अनुभूति नहीं हो पाती। जैसे मान और मोह प्रतिबंधक है, ऐसे राग द्वेष भी बड़े प्रतिबंधक है। और ये राग द्वेष ही मुख्य दोष है। ये आप जिनके संसार के जिन पदार्थों के प्रति राग होगा या जिन पदार्थों के प्रति द्वेष होगा आपके मन में, तो जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठेंगे, जैसे ही जप करने के लिए बैठेंगे, सभी जप करने वाले साधकों का, ध्यान करने वाले साधकों का अनुभव होगा निश्चित ही कि जिनके प्रति राग है या तो मन में वे पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं, या जिनके प्रति द्वेष है वो उपस्थित होते हैं और उसी का चिंतन होता रहता है। और जब एक तरफ रहता है, ध्यान एक तरफ रह जाता है, ये बड़े प्रतिबंधक है। आप जिसका चिंतन करना चाहते हो उसका चिंतन नहीं होने देते मन से, इसलिए इसको जीतना बहुत जरूरी है। और ये राग द्वेषात्मक दोष को जीत लिया है जिन महापुरुषों ने, ऐसे विवेकी महापुरुष जितसंग दोषा है। और इसी के लिए असंग शस्त्र यानी वैराग्य, उन्हीं को वैराग्यवान कहा जाता है। जितसंग दोषा कहो या विरक्त महापुरुष कहो, विरक्त का अर्थ केवल राग रहित मात्र नहीं, सारा द्वेषी द्वेष चित्त में भरा हो, राग नहीं है किसी के प्रति, तो भी वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब है कि संसार के पदार्थों के प्रति आपके चित्त में राग भी न हो, द्वेष भी न हो, उदासीन वद आसीन ऐसे आप रहें, आपका मन वैसा रहे। जब तक ये नहीं होता तब तक चित्त में से राग द्वेष हटाने के लिए साधना करते रहें। और जितनी आप ज्यादा से ज्यादा साधना करते रहें, तितिक्षा करते रहेंगे, तो अभ्यास होगा राग द्वेषात्मक दोष को जीतने का। इसके लिए महाराज श्री जी ने अपने जीवन में सबसे पहले तो शास्त्र अध्ययन किया, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम के अनुसार कैलाश आश्रम में रह करके उस तत्कालीन महापुरुषों से प्रातस्मरणीय प्रेमपुरी जी महाराज से, बड़े महाराज जी से, और बड़े महाराज जी ने विष्णुदेवानंद गिरी जी महाराज से और भी महापुरुषों से शास्त्र का अध्ययन करने के बाद फिर विवेक पूर्वक वैराग्य का अभ्यास करने के लिए असंग शस्त्र जो है ना, ऐसे मुंधा हुआ हो तो उससे संसार वृक्ष का छेदन नहीं होता। इसके लिए वहां पर एक विशेषण दिया है असंग शस्त्र का, दृढ़ेन, तो दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ वैराग्य। और जब दृढ़ वैराग्य होगा, परिपक्व वैराग्य होगा, दूधी जो है ना, जैसे हरी होर पेड़ से जो उसके बेल से लगी हुई दूधी के निकाल करके उसे पानी में डाल दो तो डूब जाएगी पानी के अंदर ही, और पेड़ पर जो सूखी है दूधी, तो उसके बेल पर ही जो सूखी है और वो अच्छी तरह से पूर्ण रूप से सूख जाएगी, और फिर पानी में डालो कितने भी गहरे समुद्र में तो डूबती नहीं है, वो तैरती है। ऐसे दृढ़ जो वैराग्य है, असंग शस्त्र है, उसे फिर ये संसार सागर डूबा नहीं सकता, उससे वो असंग ही रहता है, राग द्वेष रहित चित्त जिसका अच्छी तरह से हुआ। इसके लिए पहले खूब वैराग्य की साधना महाराज श्री जी ने की, और बाद में फिर संतों के आग्रह से, उनका तो अपना निश्चय था कि उत्तरकाशी में रह करके शास्त्र चिंतन करेंगे और संतों को स्वाध्याय कराते रहेंगे, लेकिन उनके एक विद्यार्थी मनोहरानंद जी सागर नाम के, वो उनको ले आए पहले अजमेर, फिर महाराज श्री जी ने या प्रेमपुरी जी महाराज ने मुंबई भी बुला लिया, लेकिन तब तक तो उनका वैराग्य दृढ़ हो चुका था, असंग शस्त्र दृढ़ था उनके पास। इसलिए जिनका इस प्रकार का ये संगात्मक दोष पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, पूर्ण रूप से अधीन है वो दोष, तो वे अमूढ़ पुरुष परमात्मा की अनुभूति आत्मरूप से कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रकाश इस विशेषण को स्पष्ट करते हुए हमारे परम प्रेमास्पद महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने किया। अब इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धास्पद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इस आश्रम के ट्रस्टी महामंडलेश्वर स्वामी मोहनानंद जी महाराज से निवेदन है, कम से कम 20 मिनट, अधिक से अधिक जितना भी आप बोल सके इस विषय पर प्रकाश डालें।
श्रद्धे ये महानगर ऐसा है मुंबई का, यहां प्रायः लोग ऐश्वर्य की तरफ दौड़ते हैं, महालक्ष्मी के पुजारी हैं, लेकिन प्रेमपुरी जी महाराज जब यहां आए तो ऐश्वर्य से मोड़ करके थोड़ी ईश्वर की तरफ उन्होंने आप लोगों का चित्त आकर्षित किया। उन्हीं के प्रतिरूप श्रद्धे त्यागमूर्ति जी महाराज, उनके साथ में रहने का मुझे बहुत मौका मिला। आज की सभा के अध्यक्ष महामंडलेश्वर महेश्वरानपुरी जी महाराज, परम श्रद्धे त्यागमूर्ति जी की ही प्रतिमूर्ति महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंदपुरी जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, भक्तिमती देवियों तथा सज्जनों, बड़ा सुंदर विषय आपने रखा है। कोई भी इमारत होती है, उस इमारत की मजबूती इसी बात पे है कि उसकी बुनियाद दिखाई नहीं देती है। आज प्रेमपुरी आश्रम की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय का प्रारंभ परम श्रद्धेय त्यागमूर्ति जी महाराज ने प्रारंभ किया। आज से कुछ दिन पहले मैं किसी की शताब्दी मनाने के लिए स्पिरिचुअल सेंटर में गया था। लोगों का पत्ते से प्रेम होता है, फूलों से प्रेम होता है, शायद जड़ों से प्रेम होता ही नहीं है, लेकिन जड़ों के बगैर न पत्ते होते, न फूल होता, न कुछ होता है। स्पिरिचुअल सेंटर कितने साल तक त्यागमूर्ति जी महाराज ने ही चलाया। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बहुत ऐसे ये आग्रह रहता है, लेकिन हमें लगा कि वहां भी त्यागमूर्ति जी की एक फोटो होनी चाहिए, क्योंकि वो यदि जीवित है तो त्यागमूर्ति जी की वजह से वो जीवित है। प्रेमपुरी को तो प्रेमपुरी भाग्यवान है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भूति कामो अर्चेत ब्रह्मनिष्ठम, ऐश्वर्य है क्योंकि प्रेमपुरी जी महाराज श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे, परमात्मा के स्वरूप थे, लेकिन उस स्पिरिचुअल सेंटर को जीवित रखने में महाराज जी का हाथ है। और हम लोग मैं बता रहा हूं आपको 84 की बात, पावलोवा से झोला लेकर के आते थे, आजकल तो लोग थोड़ी लाल कपड़े पहन जाते हैं तो गाड़ी में बैठ करने के बिना चल नहीं सकते हैं, वहां से आते थे झोला लेकर के नीचे, फिर जाकर के स्पिरिचुअल सेंटर चलाते थे। एक हिंदू के मन में हम श्रद्धा पैदा नहीं कर सकते हैं, जिनके मन में श्रद्धा है उनकी श्रद्धा विकृत कर देते हैं, और वो पारसी के मन में श्रद्धा उत्पन्न करना, आप लोगों में कोई होगा एक आध लोग जिन्होंने बलसाड़ा जी को देखा होगा, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो महापुरुष इतने सादे रहे, इतने गुमसुम रहे जैसे वृक्ष की जड़ गुमसुम रहती है। और आदमी, आप ये समझ लेना, गुमसुम लाचार आदमी कभी इतना अंदर से मौन नहीं होता, अंदर से मौन वही व्यक्ति होता है जो अपने से संतुष्ट होता है। जो अपने से संतुष्ट नहीं है वही जीवन में सबसे ज्यादा भाग दौड़ करता है। महाराज जी का कोई भी शब्द, कभी हमने महाराज जी के इतना बड़ा कार्य हुआ कभी ये नहीं सुना महाराज जी के मुंह से कि मैंने किया। महाराज जी कहते हैं ईश्वर की इच्छा से ऐसा हो गया। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनका जब हम स्मरण करते हैं तो हमारा जीवन स्वयं पवित्र होता है। उन लोगों के जीवन में इतनी खासियत कैसे आती है? तो आज का जो श्लोक है उस पर बहुत महापुरुषों ने प्रकाश डाला, अच्छा बहुत सुंदर आप लोगों ने सुना, लेकिन वहां निर्माण मोहा लिखा है, दो शब्द हैं वहां, मान और मोह। मान मैंने क्या है? मानना, और मानने का मतलब नहीं जानना। जो हम नहीं हैं वो अपने को मानते हैं, तो जो हम नहीं हैं जब वो अपने को मानते हैं, हम शरीर नहीं हैं, हमने अपने को शरीर माना, हम इंद्रिय नहीं हैं, हमने अपने को इंद्रियों को माना, अब उसके बाद क्या होगा? फिर शरीर की जो जरूरत होगी, इंद्रियों की जो आवश्यकताएं होंगी, शरीर की जरूरत और इंद्रियों की आवश्यकताओं को हम अपनी आवश्यकता समझते हैं। और जब इनको हम अपनी आवश्यकता समझते हैं तो इनको प्राप्त करने के लिए हम इतना प्रयास करते हैं जितना एक महापुरुष आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। श्रुति कहती है आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत, यदि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो पृथ्वी का राज्य यदि आप छोड़ते हो तो भी कम है। आप देखते हो, कोई पहले बुद्ध की बात कर रहा था, बुद्ध ने पत्नी और बच्चे को छोड़ा, करोड़ों आदमी बुद्ध के पांव छूते हैं। आदमी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पत्नी और बच्चों को छोड़ते हैं, तो क्या उनके करोड़ों लोग पांव छूते हैं? नहीं, छोड़ने का महत्व नहीं, पाने का महत्व है कि आपने पाया क्या है। तो सबसे बड़ी चीज है मान का अर्थ है जो नहीं है वो आप अपने को मानते हैं, और फिर जिस समय आप अपने को इंद्रिय मानते हैं उस समय आपको विषय की जरूरत है, और फिर अपने से भिन्न वस्तुओं को जब अपने सुख का कारण व्यक्ति समझता है उसी से मोह होता है। हमको रूप से मोह क्यों है, हमको रस से मोह क्यों है? इसलिए मोह है क्योंकि हम अपना वास्तविक स्वरूप नहीं समझते हैं, इसलिए हमें जगत की वस्तुओं के प्रति मोह रहता है। हमने दो महापुरुषों को अपने जीवन में देखा। थोड़ी सी एक बार साधना सदन में कोई ऐसी घटना घट गई, आग लग गई वहां पे थोड़ी सी, तो महाराज जी जो है ना खाली लंगोटी लेके बाहर आ गए। कोई होता तो क्या क्या करता। और दूसरी घटना हमने कांदीवली में देखी, जब मकान गिर रहा था वो पहले वो आया, वो फायर ब्रिगेड वाला, उसने बोला मकान खाली करो, तो महाराज जी बाहर आकर के और वो सामने वो देख बिल्डिंग गिर रही है और सामने बैठ करके सामने सामने गिरा वो पूरा मकान। तो महाराज जी ने एक ही बात बोली कि जो बना है वो बिगड़ गया, बस यह है कि आंखों के सामने बिगड़ गया। तो इसलिए सबसे बड़ी जो चीज है, हम जो नहीं हैं वो अपने को मानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में गलत आवश्यकताएं होती हैं, और गलत जब आवश्यकताएं होती हैं उन विषयों के प्रति हमारे मन में मोह पैदा होता है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, जैसे बताया अभी महामंडलेश्वर विश्वात्मानंद पुरी जी महाराज ने कि श्रद्धेय महाराज श्री ने अपने आचार्यों से अध्ययन किया। ज्ञान का अर्थ है क्या? ज्ञान का अर्थ ही यही है कि जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा समझा जाए। एक आपने एक कभी दृष्टांत सुना होगा कि नहीं सुना होगा, पृथ्वी घूमती है, हमारे यहां तो सभी सिद्धांतों में लिखा हुआ है पृथ्वी घूमती है, लेकिन पश्चिम जगत के अंदर यह सबसे पहले किसने बताया पृथ्वी घूमती है मालूम है आपको? गैलीली ने बताया, तो उसको फांसी की सजा हुई। तो एक आदमी था उसको उसके ऊपर बड़ी दया आई, ईसाई था वो, उसने कहा ऐसा कर तू उस चर्च में जाकर के ये बोल दे कि पृथ्वी नहीं घूमती है तो तू छूट जाएगा। उसने कहा मैं कह भी दूं पृथ्वी नहीं घूमती है लेकिन पृथ्वी तो फिर भी घूमेगी, क्योंकि ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र है, वो व्यक्ति तंत्र नहीं है। मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से हैं बोलो आप, कौन से रंग के? गेरुआ है ना, पक्का? अच्छा ये आप देख रहे हो, किससे देख रहे हो? अपनी आंखों से देख रहे हो? अब अपनी आंखों से बोलो को नहीं तुम्हारे को ज्ञान नहीं करना है तो हो सकता है ऐसा? क्यों? क्योंकि ये वस्तु तंत्र है, ये आपके अधीन नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने उस सत्य का अध्ययन, उस सत्य का चिंतन, उस सत्य का मनन किया, और मनन करने के बाद जो हैं वो उन्होंने जाना, और इसके कारण उनके जीवन में फिर मोह नहीं हुआ। एक रामायण की चौपाई है बड़ी अच्छी, ये मोह के बारे में, मोह निशा सब सोहन हारा देखें सपन अनेक प्रकारा। सपना जो होता है ना सपना, कभी आप भी देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं सपने, और सपने में आप बहुत गहराई से विचार करना, दो घटनाएं घटनी हैं। एक तो हम जो हैं वो अपने को नहीं समझते, और एक जहां हम होते हैं वहां अपने को नहीं देखते हैं। जैसे यहां मरीन ड्राइव पे कोई सोता होगा वो अपने को कहां देखता है? मरीन ड्राइव वाला हिमालय में नहीं देखता, मरीन ड्राइव वाला अपने को अमेरिका में देखता है। और क्या समझता है अपने को? कोई गरीब है तो अमीर समझता है, अमीर है तो गरीब देखता है। सपने की खासियत है कि जो हम नहीं हैं वो अपने को समझते हैं, और जहां नहीं है वहां अपने को देखते हैं। और जैसे ही हम जगते हैं, जगने के बाद हम जो हैं वो अपने को समझते हैं, और जहां हम हैं वहां अपने को देखते हैं। मानो आप अपने को अमेरिका में देख रहे हो, अब आपको अपने को मरीन ड्राइव में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जगने से कोई यहां नहीं आता। आप यहां आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां आप पहले से ही हैं। इसी प्रकार से ये जो मान शब्द आया ना, इसके पहले अविद्या है, यही निशा है। इस अविद्या के वजह से हम जो नहीं हैं वो अपने को मान लेते हैं, और अपने को वो मानने के कारण हमारे जीवन में मोह होता है। जो बड़े महापुरुष होते हैं वो जो हैं, अच्छा जो आप हैं, आप प्रेमपुरी में पाठ करते हैं ना, बोलते हो एक इतवार के दिन शायद बोलते हो फुर्सत में, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे, और अंतिम में क्या बोलते हो? चिदानंद रूपा शिवोम। ये तीन पंक्तियां यदि आपके जीवन में घटित हो जाएं तो चौथी पंक्ति फिर अपने आप घटित होती है। लेकिन जब तक तीन पंक्तियों वाला आप अपने को समझ रहे हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार समझ रहे हैं, तब तक आपकी डिमांड कुछ और हैं, आपकी आवश्यकताएं कुछ और हैं, और उन्हीं आवश्यकताओं में आप उलझे हुए हैं। जो आप अपने को समझते हैं उसी के अनुसार आपकी आवश्यकताएं होती हैं। तो जो महापुरुष होते हैं वो जो हैं वो अपने को समझते हैं, वो किसकी वजह से? शास्त्र अध्ययन की तरफ से, क्योंकि शास्त्र जो है वो अज्ञात का ज्ञापक है। वो जो सत्य तत्व है उस सत्य तत्व के बारे में वो शास्त्र में बताता है, और महाराज जी का जीवन वास्तविक में शास्त्र था। जो जीवन निष्ठा देखिए, आप हॉस्पिटल नहीं गए तो नहीं गए अंतिम तक, आश्रम में रहे तो आश्रम में रहे, ऐसा पवित्र जीवन एक इतिहास का विषय बन गया अभी, बस और कुछ नहीं। ऐसे महापुरुषों का स्मरण करने से भी हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे महापुरुषों के बारे में कुछ बोल करके हम अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। मैं समझता हूं कि समय बराबर हो रहा है, 9:30 बजे तक का कार्यक्रम सहित है, तो अभी अध्यक्ष जी महाराज का प्रवचन होगा, उसके पहले महाराज श्री सूचना देंगे कुछ आपको। हरिओम तत्सत।
हरिओम हरिओम। अध्यात्म नित्या इस विशेषण को बड़ा ही सुंदर शब्दों से महाराज श्री जी के जीवन में घटाते हुए आपने स्पष्ट किया। अध्यात्म नित्या में अध्यात्म शब्द का अर्थ ही है आत्मनि इति अध्यात्मम। तो आत्म विषयक, और आत्मा का मतलब वही सत्य, बार बार सत्य शब्द का प्रयोग जो कर रहे थे मंडलेश्वर जी महाराज, वो सत्य ही अध्यात्म है, और उसी में निरंतर अपने मन को जो लगाए रखे हैं उन्हें कहा जाता है अध्यात्म नित्या। आत्मचिंतन में मन जिनका निरंतर लगा है, लेकिन किनका लगता है? पूर्व वाले दो विशेषण जिनके अंदर आते हैं वे, फिर आसुप्ते रामृते कालम नये वेदांत चिंतया हो जाता है उनका। फिर नावसरम किंचित दद्यात कामादिना मनाग अप के उसको स्पष्ट करने के लिए है ओ विनिवृत्त कामा। तो अब ये सभा अपनी पूर्णता की ओर जा रही है। महाराज श्री जी के 94वें प्राकट्य महोत्सव की इस सभा में अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले हमारे परम श्रद्धेय महाराज श्री जी से निवेदन है कि आप अपना आशीर्वचन प्रदान करते हुए इस सभा को संपन्न करें। तदनंतर हमारे परम प्रेमास्पद गिरीश भाई जी आभार विधि करेंगे।
हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण अपने नाम को सार्थक करने वाले स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और उन्हीं के अंतेवासी परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय त्यागमूर्ति जी महाराज और उन्हीं के अंतेवासी आज के सभा के संयोजक परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंदपुरी जी महाराज, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर गण, विद्वत संतगण, माताओं भाइयों और बहनों, बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों ने सुनी। मैं अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इन त्रिमूर्ति का स्नेह प्रेम और अपनत्व मिला। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज का भी आशीर्वचन मुझे मिला। त्यागमूर्ति जी का स्नेह और प्रेम तो था ही, हमारे परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव परम श्रद्धेय स्वामी त्रिवेणीपुरी जी महाराज और त्यागमूर्ति जी के विषय में एक कहावत थी कि वो दोनों लंगोटिया यार थे। क्या थे? समझते लंगोटी, आपस में एक दूसरे की लंगोटी भी बदल के एक दूसरे को पहन ले। और वैसा ही स्नेह, वैसा ही प्रेम, वैसी ही आत्मीयता हमको स्वामी विश्वात्मानंदपुरी जी महाराज से मिल रही है। बड़ा सुंदर चर्चा सुनी आपने। गीता में भगवान ने एक वाक्य कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो भगवान कहते हैं जन्म है और मेरा जो कर्म है वो क्या है? दिव्य है। दिव्य शब्द का सीधा सा अर्थ होता है दिव्य भवम दिव्यम, जो प्रकाश में ज्योति में होता है उसको दिव्य कहते हैं। आजकल सिनेमा हॉल में क्या होता है? एक तीव्र प्रकाश प्रोजेक्टर के द्वारा निकलता है, उसके आगे एक फिल्म की रील चलती है और वो उस प्रकाश में पड़ने के बाद पर्दे पर आती है और पर्दे पर आपको दृश्य दिखाई देते हैं, इसी का नाम है दिव्य। जो आत्म ज्योति है, इस आत्म ज्योति के आगे हमारे चित्त में भरे हुए जो संस्कार, जन्म जन्मांतरीय संस्कार, वो संस्कार आते हैं और फिर हमको संसार दिखाई देता है। मन सुख और दुख का कारण है। वस्तु से नहीं, सुख और दुख मन में पहले से रखे हुए जो संस्कार हैं, प्रीवियसली रिकॉर्डेड इंप्रेशंस ऑन माइंड, वो जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुकूल जो संस्कार आता है तो हमको सुख हो जाता है, और उन संस्कारों के विपरीत जो संस्कार आते हैं तो हमको दुख होता है। वस्तु से मतलब नहीं। मैं एक बार हरिद्वार से दिल्ली जा रहा था बस में। रास्ते में मुजफ्फरनगर में एक सज्जन आके मेरे पास बैठ गए और बैठते ही उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया। उसका धुआं मेरी नाक में आने लगा, उसकी नाक में भी जाता है। मुझे उस धुएं से दुख हो रहा है और उसको सुख हो रहा है। सिगरेट के धुएं में अगर सुख होता तो मुझे क्यों नहीं लगता, और सिगरेट के धुएं में अगर दुख होता तो उसको क्यों नहीं लगता। मेरे संस्कार कहते हैं ये दुख है और उसके संस्कार कहते हैं ये सुख है। वो लड़का दिल्ली पहुंचा, पहले से उसने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि बेटा तुझे तो एक्यूट कैंसर हो चुका है, अब तूने एक भी सिगरेट पिया तो तुझे ईश्वर भी बचा नहीं सकेगा। उसने सिगरेट पीना एकदम छोड़ दिया, कसम खा ली कि सिगरेट को छूना ही नहीं। 6 साल के बाद एक दिन फिर वो मेरे साथ उसी बस में बैठा, लेकिन अब वो सिगरेट नहीं पी रहा। एक तीसरा लड़का आके उसके पास में बैठा और उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अब इस मेरे पड़ोस में बैठे हुए उस युवक को सुख होगा कि दुख होगा? यही है, सुख दुख है क्या? सुख दुख हमारे मन की कल्पनाएं हैं, पूर्व गृही जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुकूल और प्रतिकूल ही हमको सुख और दुख मिलता है। और ये है क्या? यही तो मान्यता है। हमने अपने आप को अपनी मान्यताओं के घेरे में बांध रखा। महाभारत के सीरियल में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं किस किस के लिए क्या करूं। हर एक व्यक्ति ने तो अपने अपने आप को इन पूर्वाग्रहों के अंदर बांध रखा है। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, मैं ये नहीं करूंगा तो वो कैसे होगा। ये सारी की सारी मान्यताएं हमारी हमारे पैर की बेड़ियां बन जाती है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगीरी। ये द्वंद्व है। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है एक ही सिक्के की दो साइड। सिक्का होता है ना कॉइन, उसकी दो साइड होती हैं। क्या कहते हैं वो हेड और क्या वो कहते हैं, अब समझ लो हेड एंड टेल। आप उन दोनों को कभी मिला सकते हैं क्या? कभी नहीं मिला। और अलग कर सकते हो क्या? ना कभी मिला सकते हैं ना कभी अलग कर सकते। गर्मी सर्दी ये क्या है? 20 डिग्री टेम्परेचर हो तो उसको ठंडा कहोगे कि गर्म? जो व्यक्ति 30 डिग्री से वहां आ रहा है उसको बड़ा ठंडा लगेगा। लेकिन जो 10 डिग्री से आ रहा है उसको है क्या, गर्म है कि ठंडा है? ये सारी की सारी क्या है, ये इनको कहते हैं द्वंद्व। ये सुख दुख आदि क्या है, द्वंद्व है। और हम इसी सुख दुख के दुख को दूर करने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं। भगवान कहते हैं इनसे विमुक्त हो जाओ। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ति अमूढ़। और एक बात बताऊं, अ शब्द जो है ना, अ अक्षर, ये जो किसी के आगे लगता है तो उसके न होने को नहीं बताता, बल्कि उसके विपरीत बताता है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का न होना नहीं, बल्कि उल्टे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान भी एक ज्ञान है लेकिन उल्टा है। इसी प्रकार से अमूढ़ का अर्थ भी मूढ़ता न होना नहीं, बल्कि मूढ़ता के विपरीत सदा जागृत रहना है, हमेशा जागृत रहो। ऐसी अवस्था में भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये मान मोह, अभी आप सुन रहे थे, बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी। मान क्या है, जो हमने मान रखा है, हमारी मान्यताओं को ही मान कहते हैं, और हमारी सारी की सारी मान्यताएं हमारी कल्पनाओं पर टिकी है। पंचदशी में एक प्रकरण है, विषयानंद प्रकरण, अंतिम प्रकरण, वहां इस बात को स्पष्ट किया कि क्या वास्तव में विषय के अंदर आनंद होता है। एक व्यक्ति, उसको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक परात भर के रसगुल्ले उसके कमरे में रख दो और कहो कि तुझे जब भूख लगे रसगुल्ला ही खाना पड़ेगा, इसी का रस पीना पड़ेगा, और कोई नमकीन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, कितने दिन खा सकता है? एक दिन के बाद ही, थोड़े दो चार पांच रसगुल्ले खाने के बाद ही उसको फिर अगर जबरदस्ती वही खाना पड़े दो दिन, तो उसको रसगुल्ला देखते ही वॉमिट होने लगेगी। कहां है उसमें सुख? एक छोटा बच्चा रो रहा था, बहुत देर से रो रहा था। मां ने पूछा क्या बात है, कहता है रसगुल्ला खाना है। मां ने रसगुल्ला निकाल के दिया, बच्चे ने खाना शुरू किया तो रोना बंद हो गया। खाने के बाद फिर वो रोने लगा। मां ने पूछा अब क्या है, तो कहता है बिस्कुट खानी है। मां ने एक बिस्कुट दिया, बच्चा फिर रोना बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर रोने लगा, अब क्या है, तो कहते अब चॉकलेट खानी है। तो मां ने एक चॉकलेट दिया, बच्चे का रोना बंद हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो पूर्वार्जित संस्कारों के कारण से रसगुल्ला मांगता है, रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है। और यूं ही रसगुल्ला मिला तो क्या होता है, मन एकदम शांत हो जाता है, और शांत मन के अंदर आत्मा का जो प्रकाश है, आनंद रूप प्रकाश, सुख रूप प्रकाश, वो पड़ता है और हमको आनंद आ जाता है। लेकिन चूंकि वो रसगुल्ला मिलने के बाद आया था आनंद, हमने उसका नाम रसगुल्ला आनंद रख दिया। फिर बिस्किट खाने लगे, तो बिस्किट खाते ही क्या हुआ, मन फिर शांत हुआ, फिर उसी आत्मा का प्रकाश पड़ा, हमको आनंद आया, लेकिन हमने उसका नाम बिस्कुटानंद रख दिया, चॉकलेटानंद रख लिया। लेकिन आनंद है किसका? न तो रसगुल्ले में आनंद है, न बिस्कुट में आनंद है, न चॉकलेट में आनंद है, लेकिन हमने मान रखा है। इसलिए हमारे यहां कितनी वैरायटियां हो गई। आज किसी कंदोई के यहां जाइए, हलवाई के यहां जाइए, वहां आपको कितनी वस्तुएं खाने की अलग अलग वैरायटियां मिले, काहे के लिए? हमारे संस्कारों को उत्तेजित करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो किसी भी विषय में आनंद नहीं, लेकिन हमने मान रखा। इस मान तक को अगर त्याग दो तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। अगर आप इस सत्य को पहचान लें कि आनंद वस्तु में नहीं है, आनंद हमारे अंदर है, तो आपको वैराग्य करने में कितनी देर लगेगी, विरक्त होने में कितनी देर लगेगी। इसलिए मान को छोड़ना उसके लिए आवश्यक है, मोह को छोड़ना, मोह का परित्याग करना। और मोह क्या है? हमने अपने अंदर एक आसक्ति बांध रखी है कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे नौजवान बेटा है, उसको जो है अगर पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, तो क्या होगा। हमने मान लिया है कि हम इन बच्चों के भाग्य विधाता हम हैं। हमने मान लिया कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे जन्म के पहले ही हमारी माता के स्तनों में दूध मां ने नहीं पैदा किया था, किसी और ने पैदा नहीं किया था, पैदा करने वाला कोई और है। हम उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते क्या? ईश्वर की जो न्याय प्रणाली है, हमको उस पर विश्वास नहीं है क्या? जस्टिस ऑफ गॉड, ईश्वर की जो व्यवस्था है, उसमें जिसको पूर्ण विश्वास है, वो कोई नया काम करता ही नहीं। वो क्या होता है? वो त्याग मूर्ति होता है। त्याग मूर्ति का मतलब क्या है? अंग्रेजी में दो वाक्य हैं, आई हैव डन दिस वर्क और दिस वर्क इज डन बाई मी। दोनों में क्या फर्क है? कहने के लिए एक ही अर्थ है, लेकिन एक में जो है वो क्या कहते हैं उसको एक्टिव वॉइस और दूसरे को पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या मतलब फर्क है? हु इज एक्टिव? वो आई जो है वो एक्टिव है, मैं एक्टिव है। और मैं जब नीचे आ जाता है, मैं एक साधन बन जाता हूं, मैं एक निमित्त बन जाता हूं, मैं करता नहीं रहता, मैं अकर्ता हो जाता हूं। भगवान ने इसीलिए कहा कि चातुर्वर्ण्य मैं सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अभिमाम विधि अकर्तारम अव्ययम। कर्ता होते हुए भी मुझे तुम अकर्ता समझो, क्या मतलब है? ये अपने अहंकार को क्या करना, पैसे बनाओ, साधन बनाओ। ऐसा जब होगा तो फिर आपको कोई नया संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदोचिते, सब संकल्पों का परित्याग कर दिया। जो मिलना है, जो हमारे प्रारब्ध में है, वह हमको अवश्य मिलेगा, न चाहने पर भी मिलेगा। और जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है, वो लाख कोशिश करने पर भी हमको नहीं मिलेगा। फिर क्यों रोते हैं, क्यों रखड़ते हैं उसके पीछे, क्यों दौड़ते हैं उसके पीछे? मिलेगा। केवल प्रारब्ध भूख बन जाओ तो फिर किसी प्रकार का कोई दया संकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और यही तो वैराग्य है, सर्व संकल्प संन्यास। संकल्प का परित्याग कर देता है वो, कोई संकल्प अपनी ओर से नहीं करता, जो सामने आया वो कर दे। आगतम स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न निवारेत। गुजराती में दो शब्द बड़े अच्छे लगते मुझे, एक भले पधारिया और एक आवजो। दो शब्द बहुत अच्छे। भले पधारे हम किसको कहते हैं? जब हमारे यहां कोई आता है तो हम उसको कहते हैं भले पधारे, और जाने लगे तो आप जो। लेकिन जो कोई हमारा प्रिय व्यक्ति आता है, हम उसको भले पधारे कहते हैं, लेकिन अगर कोई अप्रिय व्यक्ति आ जाए तो उसको कह सकते हैं भले पधारे? इसी प्रकार से अगर कोई हमारा अप्रिय व्यक्ति जाने लगे तो हम झट कह देंगे आप जो, और कोई प्रिय व्यक्ति जाने लगे तो कह सकते हैं आप जो जल्दी से। यही तो अंतर है। जो सच्चा संत है, जो सच्चा त्यागी है, जो सच्चा महात्मा है, वो यही दोनों को समान रखता है। आए हमने देखा है साधना साधन में भी कितने महात्मा, सैकड़ों की संख्या महात्मा आते हैं, खाते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ना किसी को कोई वो है रोकना है, ना किसी को भेजना है, जो आ रहा है खा रहा है, जो जा रहा है जा रहा है, हर स्थिति में अपने आप को समान रखना, इसी का नाम तो वैराग्य है, इसी का नाम तो त्याग है। और तो त्याग की मूर्ति थी, मूर्ति तो जानते हैं ना, मूर्ति किसको कहते हैं? जो अमूर्त है उस अमूर्त को अभिव्यक्त करने का माध्यम केवल मूर्ति है, जिसको आजकल की भाषा में हम कहें तो प्रतीक भी कहते हैं, सिंबल भी कहते हैं। तो त्याग मूर्ति जी वास्तव में त्याग के प्रतीक थे, सिंबल थे, मूर्ति थे वो उसके। ऐसे महापुरुष का जीवन सार्थक है, धन्य है। किसी बात को कहना, उपदेश देना बड़ा सरल है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे आप लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन जिसने उन उपदेशों को अपने जीवन में ढाला है, सार्थक किया है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन होना भी बड़े पुण्य का काम है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे त्रिमूर्ति का, स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, त्यागमूर्ति जी महाराज और हमारे वर्तमान महाराज श्री, ये तीनों वास्तव में एक ही वो धारा है जिसको अलग अलग उसमें देखा जा सकता है, लेकिन है एक ही। इन तीनों त्रिमूर्ति को जो लोग सच्चे हृदय से स्वीकार करेंगे और इनके उपदेशों को ग्रहण करेंगे, उनका जीवन भी धन्य होगा। आप सभी लोगों का जीवन धन्य हो। आप सभी लोग वास्तव में इस जो पुण्य की प्राप्ति आपको हो रही है, इसका अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकें, इसी शुभकामना, इसी शुभ भावना और इसी शुभ आशीर्वाद के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए परम श्रद्धेय त्यागमूर्ति जी महाराज का नाम हमेशा जब तक इतिहास रहे तब तक अमर रहे, इसी भावना के साथ समाप्त करता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत,
हरिओम हरिओम। बड़े सुंदर शब्दों में अध्यक्ष जी महाराज का हमें आशीर्वचन प्राप्त हुआ। जो ये आज का ये कार्यक्रम यहां पर संपन्न होने जा रहा है आभार विधि के साथ, सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक महाराष्ट्र जी का प्राकट्य उत्सव अंधेरी में भी स्वामी प्रेमपुरी सत्संग मंडल में संपन्न होगा। यहां इस विषय पर महापुरुषों के साधना उपयोगी विचार हम लोगों ने श्रवण किए, बाकी बचा खुचा वहां श्रवण करने के लिए आ सकते हैं, जो आ सकेंगे, सादर हमारा सुप्रेम निमंत्रण है। अब परम प्रेमास्पद गिरीश भाई उद्घोषणा एवं आभार विधि करेंगे। गिरीश भाई
हरिओम। महाराज जी, अभी अभी दिवाली गई, दशहरा गई, अभी देव दिवाली भी आ रही है, तो एक आरती हमेशा हम गाते हैं, जय अध्याशक्ति। उसमें जब पंचमी आती है, लाभ पाचम है आज, पंच ऋषि यहां बैठे हैं, तो मुझे लगता है जो भी साथ में गाए अच्छा लगेगा, क्योंकि वातावरण भी थोड़ा पवित्र होगा, थोड़े हम भी हल्के होंगे, और जो हमने सुना है थोड़ा पचाने की भी आनंद करेंगे हम। तो जो पांचवा जो है, पंचमी पंच ऋषि पंचमी गुण पद्मा मां पंचमी गुण पद्मा पंचम सोइए पंच तत्व त्या सोइए पंचे तत्व मां हम जयो जयो मां जगदम्बा। तो बहुत ही सुंदर इससे यह जो पंच ऋषि और पंच तत्व, और वो भी महाराज जी ने विषय इतना प्यारा चुना था, निर्माण मोह चित्त संग दोषा। जीवन में हम मोह को निर्माण न करें, मगर यह निर्माण मोह को सुनकर हम आगे चले, ऐसी हम आज के पवित्र दिवस पर त्यागमूर्ति जी से भी हम आशीर्वाद लेते हैं, परमपुर जी महाराज से भी आशीर्वाद लेते हैं, और जो भी यहां संतगण उपस्थित है उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं
बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।